साथियों नमस्कार, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। वर्ष 2000 के विदाई के अवसर पर आज हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एवं तथ्य संस्थान के सचिव पेकेश गुलवे जी रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार गुलवे जी।
नमस्कार दिनकर जी।
गुलवे जी, वर्ष 2020 के विदाई के अवसर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्ष 2020 में क्षेत्र ने क्या खोया और क्या पाया।
दिनकर जी देखिए, आपका सवाल ठीक है और वर्ष 2022 अभी हमारे समापन की हो रहे हैं। लगभग 4 या 5 दिनों के बाद में ये वर्ष समाप्त हो जाएगा और फिर हम नए वर्ष में नए उम्मीदों के साथ में नई जिज्ञासा नई प्रेरणा लेकर हम फिर नए वर्ष का सफर शुरू करेंगे। उसके पहले आपका सवाल है कि क्या खोया क्या पाया। हम लोग जीवन में बहुत कुछ खोते और पाते हैं, ये हर साल हर वर्ष का एक एक परिक्रम चलते रहता है। लेकिन हम एक संवाद जब करते हैं तो संवाद में जो बातें सामने आती हैं या संवाद में हम चर्चा करते हैं तो हम कुछ प्रमुख विषयों को उसमें रखते हैं। अब क्या कहना है कि नए वर्ष में क्या पाया है, तो पहले तो अपन क्या पाया है सकारात्मक बातों पे बात करेंगे। तो हमने 2000 वर्ष में हमने बहुत कुछ अपने क्षेत्र के लिए पाया है और पाने में हमारी दो चीजें महत्वपूर्ण रही है। पहला है अध्यात्म से जुड़ा हुआ हमारा विषय। संसार विकास खंड के ग्राम उटेकाटा में संत हीरामन और संत वाताजी महाराज का जन्म हुआ था। ये दोनों संत संसार के नहीं तो छिंदवाड़ा जिले में और मध्य प्रदेश के रामाकोना में प्रतिवर्ष होली के एक सप्ताह बाद लगने वाले एकनाथ षष्ठी मेला के प्रणेता है। इतना ही नहीं तो इन्हीं दो संतों ने संसार क्षेत्र से वारकरी संप्रदाय का अभियान शुरू किया था, वारकरी संप्रदाय की शुरुआत की थी और वारकरी संप्रदाय का ध्वज वे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक लेकर गए थे। इसलिए ये संत हीराम और संत वाताजी महाराज इस क्षेत्र के लिए संतों में एक श्रद्धा और आस्था रखते हैं, साथ ही उनके विचारों की प्रेरणा लेकर यहाँ का वारकरी संप्रदाय भी काम अपने अपने जीवन में और क्षेत्र में काम करता है। इन दो संतों का जो जन्म स्थल है वो काफी दिनों से उपेक्षित पड़ा हुआ था। अधिकांश नई पीढ़ी को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि संत हीरामन और संत वाताजी महाराज जो है उनकी जन्मस्थली ग्राम उटेकाटा में है। लेकिन एकनाथ षष्ठी मेला से जुड़े जो लोग हैं और एकनाथ षष्ठी मेला लगने वाले संत लीलामृत घाट जो है रामाकोना में और इस घाट से जुड़े हुए जो समिति के लोग हैं, इन लोगों ने ये खोज शुरू की थी बीते कुछ वर्षों में कि संत हीरामन और वाताजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और आखिर में वर्ष 2022 में इसका पता चला कि और इसका इतिहास भी मिला है कि उनका जन्म संसार विकास खंड के ग्राम उटेकाटा में हुआ था। तो बड़ा सौभाग्य है कि एकनाथ षष्ठी मेला के पूर्व ही वहाँ संत लीलामृत घाट के कार्यकर्ता और ग्राम उटेकाटा के ग्रामीण और सामाजिक संगठनों से विविध सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने उटेकाटा में पहुंचकर उस संत हीरामन और वाताजी महाराज की जन्मस्थली को चिन्हांकित कर वहां श्रमदान कर उस जगह पर एक संत कुटीर निर्माण का संकल्प लिया और वहां ग्रामीणों ने निरंतर फिर आध्यात्मिक अभियान भी शुरू किया और उस आध्यात्मिक अभियान की परिणति ये रही कि अब लोग वहाँ संत कुटी बनाने के लिए स्वयं प्रेरणा से सहयोग करने लगे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में ये 2022 की एक बड़ी उपलब्धि है। फिर हम बात करते हैं ग्राम स्वराज की। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का ग्राम स्वराज, ग्राम स्वावलंबन और प्रत्येक व्यक्ति का स्वावलंबन यानी ग्राम का समग्र विकास। सन 2022 समग्र ग्राम विकास अभियान के पिछले 2-3 वर्षों के लिए इसलिए भी उल्लेखनीय रहेगा कि ग्राम पंचायत रामाकोना के आश्रित ग्राम बिछवी में बीते 3 वर्षों से तर्कशील विचार समिति और तर्कशील विचार समिति के साथ में अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का भी सहभाग है, सभी ने 3 वर्षों से यहाँ वैचारिक परिवर्तन का अभियान चलाया था। वैचारिक परिवर्तन का अभियान तो अभी भी शुरू है और ये समग्र ग्राम विकास बनने तक वैचारिक परिवर्तन का अभियान शुरू रहेगा। लेकिन सन 2022 इसलिए याददाश्त रहेगा, इसलिए उल्लेखनीय है कि समग्र ग्राम विकास में इस वर्ष से कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी निर्माण कार्य हाथ में लिया गया और निर्माण कार्य की शुरुआत की गई और इसकी पहली शुरुआत है ग्राम बिछवी की आंगनवाड़ी को तर्कशील संस्था द्वारा गोद लिया गया है और ये गोद ली हुई आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए आवश्यक विकास कार्य इस वर्ष के अंतिम माह में यानी दिसंबर माह में शुरू हुए। हाल ही में आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए एक पेंटिंग वर्क जो होता है वो कंप्लीट हुआ है और अन्य कार्य भी वहाँ अभी चल रहे हैं, प्रगतिशील है। ये उल्लेखनीय कार्य है। मैं थोड़ा इस बीच में भूल गया था आपको बताने के लिए कि संत हीरामन और वाताजी महाराज जो है आध्यात्मिक जो हमारी उपलब्धि है उसमें संत और हीरामन वाताजी महाराज की जो पाल थी संसार के 25 गांवों में जो भ्रमण करती है यह पालकी का तीसरा वर्ष था और इस वर्ष पालकी का सकारात्मक उद्देश्य और सकारात्मक परिणाम क्षेत्र में देखने को मिला था। पालकी निकलती है कनान बचाओ अभियान के बैनर के तले और इसी अभियान के तहत निकाली गई यात्रा में हम कनान चौपाल चलाते हैं, हमारे सभी साथी उसमें शामिल हैं और ये कनान चौपाल का सकारात्मक परिणाम और परिदृश्य क्षेत्र में देखने को मिला है। लोग कनान नदी के संबंध में अब जागरूक होने लगे हैं। जैसे भी हो कनान नदी को सुरक्षित करने के लिए अब ग्रामीण और सामाजिक संगठन आप अपने स्तर पर काम करने लग गए हैं। ये वर्ष 2022 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिनकर जी,
गुरुवे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ष 2022 के ऐसे कोई अविस्मरणीय स्थान बताइए जो हम कभी भूल नहीं सकते और हमेशा हमें याददाश्त रहेंगे।
देखिए अविस्मरणीय पल पलों में इतना तो बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन एक जरूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम वो पल कभी नहीं भूल पाएंगे जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ सन 2022 में, तब उस युद्ध के दौरान संसद क्षेत्र हो, छिंदवाड़ा जिला हो या आसपास के क्षेत्र के बच्चे हो जो वहाँ मेडिकल के लिए पढ़ाई करने गए थे, उन बच्चों को यूक्रेन से भारत वापस लाने के लिए जो कठिनाइयां गई, बच्चों को अपना एजुकेशन वहाँ छोड़ना पड़ा और उनके उनको आगे अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो भी परेशानियां सामने आ रही है तो हम नहीं भूल पाएंगे। वो हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा संकट का दौर था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे यूक्रेन से युद्ध के बीच यूक्रेन से बाहर निकलकर अपने स्वदेश लौट पाए। इसमें कुछ बच्चे आज भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए सफर कर रहे हैं। ये सन 2022 के लिए 22 का एक बड़ा दुखद क्षण।
गुरु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मोबाइल वाले ने समय समय पर विविध अभियान चलाए, कभी हेलमेट को लेकर चलाए, कभी ऑक्सीजन की कमी को लेकर चलाए, कभी मिड डे मील को लेकर चलाए, तो आप क्या मोबाइल वाले के द्वारा चलाए गए अभियानों से क्या सकारात्मक परिणाम क्षेत्र में देखने को मिले हैं?
दिनकर जी, मोबाइल वाणी तो विविध अभियान जब चलाती है तो उसके सकारात्मक परिणाम तो आते हैं, लेकिन बीते 6 महीने तक मोबाइल वाणी से यात्रा के दौरान, बाइक चलाने के दौरान जो हेलमेट पहनने के संदर्भ में और हेलमेट हमारी सुरक्षा कैसे करता है और हेलमेट नहीं होता हमारा जीवन कितना संकटमय होता है और ये हेलमेट के अभाव में वाहन चालक ही नहीं तो उसके परिवार को भी क्या समस्याएं सामने आती है, उन्हें किन संकटों का सामना करना पड़ता है और यदि हेलमेट पहनते हैं तो उसकी क्या सुरक्षा होती है। इस पर मोबाइल वाणी ने जो 6 महीने तक जो निरंतर अभियान चलाया, मुझे ये अभियान काफी पसंद आया। पसंद इसलिए भी आया कि इस अभियान के बाद में जिला प्रशासन सजग हुआ, पुलिस प्रशासन सजग हुआ। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और यातायात विभाग ने मोबाइल वाणी के इस कार्यक्रम के पश्चात निरंतर जनजागरण अभियान चलाया और लोगों को सतत जागरूक किया और मोबाइल वाणी के माध्यम से चलाए गए अभियान के ही कारण आज ये स्थिति है कि लगभग 60-70% लोग अब बाइक पर, मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के नहीं चल रहे हैं। मैं पत्रकार भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, ग्रास रूट लेवल से मेरा करीब का संबंध रहता है, मैं जमीन से जुड़कर ही काम करता हूँ, मेरा क्षेत्र में काफी भ्रमण होते रहता है। मैं ऐसे लोगों को भी हेलमेट पहने हुए मैंने देखा तो मुझे ताजुब हुआ कि जिन लोगों को कभी मैं कहा करता था कि यार हेलमेट पहना करो तो वो कहते थे कि हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, आज वही लोग हेलमेट पहनकर जब मुझे दिखते तो मुझे लगा हाँ मोबाइल वाणी का ये अभियान इतना असर कर गया कि वो जन जन तक पहुंचा और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और हेलमेट पहनकर आज लोग सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। यह मोबाइल वाणी का सबसे बड़ा अभियान की सफलता है।
गुरुवे जी, हम आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि अभी नव वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, 2023 में आप किस तरह का संसद, किस तरह का छिंदवाड़ा देखना चाहोगे जिसमें सभी प्रकार की बातें शामिल हो, समग्र विकास की बातें शामिल हो, तो किस तरह का संसद देखना पसंद करोगे?
देखिए दिनकर जी, आपका सवाल बहुत बड़ा है और वो उसको मैं संक्षिप्त में आपको उसका जवाब देता हूँ। मनुष्य की इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं काफी बड़ी होती है। मैं तो चाहूंगा कि 2023 में ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मेरे मन के अनुरूप कुछ हो जाए। ये इच्छा और आकांक्षा पे निर्भर होता है। लेकिन हम सामान्य रूप से यदि अपनी अपेक्षाएं रखते तो यही रखते हैं कि वर्तमान दौर में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, समाज में एक तरह का जो नकारात्मक भाव समाज में निर्माण होने लग गया है। हम धार्मिक क्षेत्र में जाए तो धर्म के नाम पर जो आडंबर है, जो पाखंड है, धर्म के नाम पर आपस में जो द्वेष भावनाएं फैलाई जा रही हैं, और विकास के जो मायने हैं, हमने रोड, सड़क, नाली और अन्य निर्माण कार्य को हमने विकास मान लिया है, जबकि विकास सामाजिक विकास होना चाहिए। मेरा सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है, मैं आपको एक सामाजिक न्याय की बात के माध्यम से अपना एक उदाहरण आपको देता हूँ और वही मैं अपेक्षा 2023 में सभी लोगों से रखता हूँ कि हम सामाजिक न्याय, हम सामाजिक विकास की ओर आगे बढ़े। मैं सामाजिक विकास की बात ये करता हूँ कि यदि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं अपने क्षेत्र में कहीं चल रहा हूँ और वहाँ कोई यदि निर्माण कार्य हो रहा है और मुझे वो कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, तो मैंने वहाँ दो पल रुक कर ये जरूर देखना चाहिए कि वाकई में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो उसके निर्धारित मापदंड के अनुसार हो रहा है कि नहीं। कम से कम मैं उसकी तहकीकात करूँ, कम से कम वहाँ जो इंजीनियर है, वहाँ जो लोग काम है, काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूँ कि भैया यार, आपका एस्टिमेट क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है दिनकर जी, मैं यदि इंजीनियर भी हूँ ना, तो मैं सड़क से निकल भी जाऊँ और वहाँ यदि सड़क का काम चल रहा हो तो मेरे मन में भाव आता है, अरे यार ये तो काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है, ये काम तो यार नगर पालिका का है, अरे यार ये काम तो ग्राम पंचायत का है, ये देखना उनका दायित्व है। नहीं, ये देखना हमारा भी दायित्व है, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार, सामाजिक विकास की बात करते हैं। और इसलिए भी हमारा दायित्व बनता है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो हमारे टैक्सेशन के दिए हुए पैसे से हो रहा है, यानी मेरी जेब से गए हुए पैसे, टैक्सेशन के माध्यम से मेरे जेब से गए हुए पैसे से वो निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए उसको देखना भी मेरा दायित्व बनता है। ये सामाजिक विकास की भावना निर्माण होनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक न्याय की भावना। हम सामाजिक न्याय की भावना और सामाजिक न्याय हमारे संविधान में हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय क्या है, मैं छोटा सा उदाहरण।
गुरु जी
जी,
वर्ष 2020 अब अंतिम हो रहा है, वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष 2000 जब 22 लगा था,
हाँ,
तो हम कोरोना से उभरे थे,
हाँ,
और वर्ष 2022 के अंतिम समय में फिर कोरोना का डर सता रहा है, तो ऐसे समय में आप अपना क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहोगे लोगों को कि वो भविष्य में 2023 में कोरोना से कैसे सुरक्षित रह सके।
देखिए दिनकर जी, अब कोरोना क्यों होता है और कैसे होता है अब ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हम जैसे तैसे 2022 के शुरुआत में हम जैसे तैसे कोरोना से उभरे, उसके बाद में हम कुछ समय तक बड़े सख्त रहे, हम स्वयं में सख्त रहे, हमने नियमों का पालन किया। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बदलते गया हमने नियमों का पालन नहीं करना बंद कर दिया। अभी और एक नया भय हमारे बीच में है, क्योंकि जो चीन से जो बातें निकलकर बाहर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि फिर कहीं कोरोना फैलने लग जाए। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कोरोना होने के जो कारण है उसके लिए जिन नियमों का पालन करना है, हमें अपने स्वास्थ्य के साथ में भी जो नियमों का पालन करना है वो हमने करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसका सामना हम नियमों के माध्यम से ही और स्वयं सख्त होकर ही कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य बेहतर रखकर ही कर सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर हो, नियमों का पालन करें, अपने साथ में अपने साथियों की भी भलाई सोचे और देश में फिर से कोरोना नहीं आए और फिर से वो लॉकडाउन और फिर वो लॉकडाउन की समस्याएं हमको नहीं देखना पड़े। इसीलिए लोगों से अपील है कि कृपया कोरोना आए या नहीं आए, लेकिन हम अभी से सजग और सतर्क रहें तो हम निश्चित रूप से कोरोना का सामना कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर वर्ष 2022 में क्या खोया क्या पाया और वर्ष 2023 में हमें किस तरह जिंदगी जीना, इस विषय पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
नमस्कार दिनकर जी।